नमो भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताशु कामादि तरंगमध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणातु। हम लोग रथ यात्रा के प्रसंग का के अनुसार में रूप गोस्वामी का प्रसंग लेकर के चल रहे थे और उनके लिखे हुए वो तीन चार श्लोकों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में जो उल्लेख किया है उसके संबंध में कुछ हम लोग व्याख्या कर रहे थे। आज लोकनाथ गोस्वामी की भी तिरोभाव तिथि है। लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु जी के परिकरों में से अन्यतम हैं। उन्होंने अपने संबंध में कहीं भी कुछ उल्लेख करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मना किया था, इसलिए उनका अधिक कुछ नहीं दिया है, उनके आदेश को पालन किया है। तभी भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथों से इधर उधर से उनके जीवन चरित्र के संबंध में बहुत सी बातें हैं। आज भक्त लोग उसके संक्षेप में वर्णन करेंगे, तब मैं चैतन्य चरितामृत उस प्रसंग को पाठ करूँगा। अभी भक्ति वेदांत मधुसूदन महाराज ही कह सकते हैं ना, तुम्हें नूतन नूतन कुछ बोल रहे हो तो उत्तर दे दे सर, तब यही अगता हिंदी में तुम्हें बोलबे बोल, तुम्हें जानो ताले बोलो, बोलो कुछ दो चार बोल बोलो तुम
ये लो। लोकनाथ गोस्वामी लौकिक लीला में महाप्रभु के मामा संबंधीय भाई थे। इनकी दीक्षा और दीक्षा गुरु और ये कौन है, महाप्रभु जी से ही सुनकर और उनके साथ में रह करके उनके भावों को देख करके सब कुछ उन्हें से ही सीखा। जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के महाप्रभु जी गुरु हैं, ऐसे इनके भी गुरु ही हैं। दूसरे को गुरु नहीं बनाने की जरूरत थी और उन्हीं के निर्देश से ये भूगर्भ गोस्वामी को साथ लेकर, भूगर्भ गोस्वामी पीछे नाम हुआ, भूगर्भ को लेकर ये भी अपने कुटुंबी संबंधी में ही छोटे से बच्चे उस समय थे, ये भी महाप्रभु जी के निर्देश से आए। जैसे रूप सनातन जी को इन्होंने निर्देश दिया था ब्रज में जाकर के वैसे भजन करो, तीर्थ लुप्त तीर्थों का उद्धार करो और सब जो आदेश दिए थे इनको भी यही दिया था। इसलिए ब्रज के विशेष विशेष स्थानों में पहले तो उन्होंने परिक्रमा की, सब स्थानों में गए और अंत में कृष्ण लीला की जो विशेष लीला स्थलियाँ हैं नंदगांव बरसाना उसी के पास में खदीर वन साकेत, फिर उसी के निकट में छत्र वन, उमराव गांव में ही किशोरी वन है, खेलन वन इत्यादि में रहते थे। कृष्ण लीला का यही सबसे मूल स्थान है, पास ही में फिर राधा कुंड आ जाता है,
यहीं पर आकर के दिन रात भजन करते थे। उनका भी वैराग्य रघुनाथ दास गोस्वामी और लोगों से गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी से भी बहुत अधिक था लोकनाथ दास गोस्वामी का। माधवेंद्रपुरी जैसे कृष्ण ने उनकी सेवा बुला करके ग्रहण किया, इनको भी बुला करके अपनी सेवा राधा विनोद के रूप में उनको प्रदान किया। आप लोग जान ही सुन चुके हैं कि वे कृष्ण लीला की लोक मंजूलाली उमंजरी थी, दिन रात भजन में तन्मय रहते थे, उनको समय नहीं रहता था। उनकी लीला चरित्र से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए जे कैसे भजन किया जाता है। नरोत्तम ठाकुर से भी सीखिए जे कैसे शिष्य होता है। कोई भी कामना नहीं, इन्होंने हमारे अरे क्या नाम माधव महाराज जी ने भी बतलाया बहुत उसका अर्थ लेकर के। वो तो अर्थ है किंतु लौकिक लीला में उन्होंने भजन करने के लिए उनको निर्देश दिया, कृष्ण नाम करना, कृष्ण की सेवा करना है। उस समय भक्त कृष्ण सेवा में निविष्ट आविष्ट हो जाता है। साधारण भक्तों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए ये कैसे नाम किया जाता। अंततः कुछ समय सवेरे या रात के अंतिम प्रहर में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके निश्चिंत रूप में उनका नाम रोते रोते करें, जो जिस अधिकार में है, जो अनर्थ से भरे पड़े हैं, जिनको इस सब का ज्ञान नहीं हुआ, अनर्थों को दूर करने के लिए रोए, शुद्ध भक्तों का संग मिलने के लिए रोए, और ये नाम हमारे हृदय में स्फूर्ति हो रस के साथ में, इसके लिए रोए, यही भजन है। उसको छोड़ करके दूसरी कुछ करने जाते हैं वो उच्च कोटि का साधक अंततः भाव भक्त ऐसा नहीं करता। निष्ठा तक तो ऐसा हो सकता है इधर उधर, किंतु भाव भक्ति आने के बाद में उसका कभी चित्त ही नहीं लगेगा। इसलिए नरोत्तम ठाकुर ने कुछ ऐसा ही लौकिक लीला में दिखलाया जो अनुचित था भक्त के लिए, अनुचित था, किंतु उन्होंने जो शासन किया उस शासन को मान करके गृह में लौटे तो घर में शादी फादी कुछ नहीं किया, बस लीलाओं का चिंतन, ग्रंथ लिखन, प्रचार, सर्वत्र प्रचार किया शुद्ध भक्ति का। नहीं तो नागालैंड क्या है वो मणिपुर नागालैंड, अब तो अलग अलग आसाम इत्यादि हो गया है, ये सब केवल मणिपुर नहीं, सारे पूर्वी बंगाल में उन्होंने ये प्रचार किया। अभी भी उसका कुछ है भाव, किंतु कुछ विकृत हो गया है। मांस मछली खाते हैं और भी कुछ अनाचार है, किंतु वो कीर्तन करते हैं, भजन भी कुछ करते हैं, किंतु उन लोगों का बड़ा प्रभाव था। हम लोग भी भजन वैसे करें, कोई भी कामना हृदय में ना आए संसारी, और उसी तरह से भजन करें, नाम को पूर्ण कृष्ण तत्व समझ करके, तो धीरे धीरे नाम करते 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 वो हृदय में स्फूर्ति हो। आजकल कोटिस्वपी महामुनि, कोटि कोटि लोगों में एक ऐसे बिरले व्यक्ति दिखते हैं संसार में जो इस प्रकार के भजन में मग्न रहता है, और उसी की इस विषय में सिद्धि होती है। हम लोग जिस प्रकार से गुरु सेवा कर रहे हैं, अधिकांश लोग उससे कोई संभावना नहीं है,
कर्मशः इस प्रकार से करो। बहुत से लोग हैं इनको हरि कथा में रुचि नहीं है, तो हरि कथा रुचि नहीं ले पंड से ईषण। हरि कथा में रुचि जिसकी नहीं है उसका अर्चन, उसकी कोई भी सेवा, उसका नाम भी स्थिर नहीं रहेगा, वहाँ से च्युत हो जाएगा। हरि कथा में जिनकी रुचि नहीं है, और जो लोग हरि कथा को प्रमुखता, हरि कथा की प्रमुखता नहीं देते, उसका पालन नहीं करते, सुनते हैं सब कुछ और करते हैं उल्टा, तो क्या होगा, ये अपराध हो जाएगा। साधारणों का जो पाप होता है इन लोगों का अपराध हो जाएगा। इसलिए इन सब से बच करके भगवान का भजन करो शुद्ध रूप में, फिर जीवन नहीं मिलेगा। इसे समझो जी, ये जब जीवन चला गया फिर शुद्ध भक्तों का संग मिलना, ब्रज में आना, ये सब संभव पर नहीं होगा। इसलिए अपराधों से बच करके शुद्ध रूप में हरिनाम करते हुए उनके अनुगत्य में जीवन यापन करो, लोकनाथ दास गोस्वामी जैसा, तब तो हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। तो पीछे सरिए दो तरीका। कल हम लोगों ने उन दोनों श्लोकों का, दोनों श्लोकों की कुछ कुछ व्याख्या की थी, और उसमें एक श्लोक को जोड़ दो, आहुष्य नलिनाथ तो इन जंगलों की कटाई को रोक रहे हैं, जो पशु पक्षियों को ये कर रहे हैं और साधारण समाज के लिए कल्याण की बातें करते हैं, वो लोग अच्छे हैं। भक्ति का ज्ञान कहाँ, उन लोगों को ये पता नहीं है कि भक्ति वैसी चीज नहीं है जिसको वो समझते हैं। हम लोग इतना करके भी जीवन दे करके 80 वर्षों में जो नहीं समझ सके वो हम लोगों से बहुत अधिक समझते हैं। समझते माने खाक पत्थर कुछ नहीं उनके समझ में आता, भक्ति किसको कहते हैं जानते नहीं। दुर्भाषा जैसे लोग प्रभावशाली, और घर में बैठे हुए अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा कर रहे हैं, वही नहीं समझ सके। और वो उनको एक मिनट के अंदर में पता हो गया ये कितने महान हैं। भक्त लोग ये इनके समझ में नहीं आता, वो समझते हैं कि ये संसार का कल्याण कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए, अपना मोक्ष के लिए, यही समझते हैं। किंतु उनको ये पता नहीं है जो भगवान के भक्त लोग कितना करते हैं संसार का कल्याण, उनके समझ में नहीं आता। लोकनाथ गोस्वामी बैठ करके अपनी कुटी में भजन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो इसमें जगत का कल्याण कहाँ है, है क्या कल्याण है? अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, उनकी ये धारणा है, मोक्ष के लिए अपने कर रहे हैं। किंतु यहाँ पर ये विचारणीय है कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा बड़ी है या लोक समाज की सेवा बड़ी है, कल्याण किससे होगा? एक आदमी भगवान की सेवा कर रहा है और एक आदमी पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सब की सेवा कर रहा है, उनको पानी पिला रहा है, खिला रहा है, उनकी और सब सेवा कर रहा है, उनकी बीमार होने पर उनकी सेवा करता है, ये करता है, और एक आदमी भगवान में के भजन में निविष्ट है, किसकी सेवा अधिक हुई? कृष्ण की सेवा करने से पशु पक्षी कीट पतंग सबके, विश्व ब्रह्मांड के अखिल जितने प्राणी हैं उनकी सेवा हो जाएगी। और भगवान को छोड़ करके ये लोग जो करते हैं इनका जन्म मरण भी नहीं दूर होगा, कुछ पुण्य होगा, किंतु उस पुण्य के द्वारा भी उनका कोई कल्याण अधिक नहीं होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये तो एक जीव एक चींटी का भी उपकार नहीं कर सकते, इनके समझ में नहीं आता, इनके समझ में इनको विश्वास नहीं है ऐसा, जो भगवान की सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होने से अब बाकी क्या रहा, कुछ बाकी रहा इनके समझ में नहीं है।
If anyone is serving Krishna and another, serving all whole universe, Tvai prasanne
prajna.
आप यदि प्रसन्न है तो सब जगत प्रसन्न, और आप ही प्रसन्न नहीं है तो ही अप्रसन्न है। तुम यदि प्रसन्न नहीं तो जगत का कोई एक चींटी का भी कुछ नहीं कर सकते, इनके दिमाग में नहीं है। और कृष्ण की सेवा करने से सारा विश्व ब्रह्मांड उनके अंदर में है। कमल जी कल कह रहे थे और भी कह रहे सभी लोग, कृष्ण के अंदर से बाहर में कोई चीज है विश्व ब्रह्मांड में? कुछ है बाहर? कुछ भी बाहर नहीं है, सब तो उसी के अंदर में है। भगवान, भगवान भा अखिल विश्व के ब्रह्मांड के भर्ता पोषक, और वा माने अखिल प्राणी जिसमें वास करते हैं, अखिल प्राणियों में जो वास करते हैं, और बाकी कहाँ रहा? आप तो एक चींटी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, और क्या क्या प्रसन्न है इसे कुछ नहीं होने का। इसलिए भगवान की प्रसन्नता से जगत की प्रसन्नता हो जाएगी। वे भगवान की इच्छा को समझ लेते हैं और उसके अनुसार में चलते हैं, और ये लोग क्या समझते हैं? खाक पत्थर कुछ नहीं, वो क्या कर सकेंगे? धरना दे सकते हैं, गोली से मारे जाएंगे, या क्या कर लेंगे? और यदि भगवान का कोई भक्त हो, इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा, इनके समझ में नहीं आते। भगवान के भक्तों के समान उदार जगत में कोई नहीं। आज भक्त नहीं होते तो ये सब चीजें नहीं आती। लोग इसके लिए ब्रज में नहीं आते हैं, ये सब काम करने किस लिए आते हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी किस लिए आए? क्या क्या किया उन्होंने? इसलिए यहां कहते हैं, ये तो साधारण अर्थ बतलाया कि वही चरण कमल आपके हमारे हृदय में उदित हो, किंतु का इसका यथार्थ क्या भाव है इसको बतला रहे हैं। पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षात अमारे योग ज्ञान करिला उपाय। योग ज्ञान माने तुम सब समय हमारा ध्यान करो, ध्यान योग। उद्धव के द्वारा भी यही बतलाया, न मे सर्वात्मको वियोगो। ये तो कुछ अच्छा ना कि श्लोक, तुमसे हम लोगों का सर्वात्मिक वियोग नहीं है। मतलब क्या है? बहुत मतलब इसके हैं, जो जैसा है वैसा ही सोचेगा। सर्वात्मिक वियोग नहीं है। कृष्ण ने इस बहुत से अर्थों में अपने भावों को प्रकाश किया, जो जैसा व्यक्ति है वैसा ही समझेगा, किंतु गोपियों को इससे संतोष नहीं हो सकता। पूर्व उद्धव के द्वारा यही कहा, सर्वात्मिक वियोग नहीं है। क्यों? जैसे जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इत्यादि समस्त शरीरों में ये सब व्याप्त है, उसे अलग उसको नहीं किया जा सकता है। हवा को शरीर से अलग किया जा सकता है? अरे उसी से तो बना है, हवा पानी ये सब उसे अलग नहीं। वैसे मेरे द्वारा तुम्हारे समस्त तंतु बने हैं, तुमसे हमारा वियोग कहाँ? अब यहां करें उद्धव इत्यादि के द्वारा एवे साक्षात, साक्षात रूप से वही यहाँ पर कह रहे हैं, यही उदाहरण दिया। जो ज्ञान कहिला उपाय, मिलने का, आपसे हमसे मिलने का उपाय आपने ज्ञान जो को बतलाया। तुम्ही विदग्ध कृपामय जानहो अमार हृदय मोरे ऐछे कहते ना जुआ। खीज करके कह रही हैं, कुछ अप्रसन्न हो करके कह रही हैं। क्या हम जोगी नहीं हैं आपका ध्यान करें? ये खींच करके करें। क्यों? वो कहते हैं कि हमारा बचपन से आज तक ऐसा कोई समय नहीं गया तो अपने आप ध्यान में हमारे मन पर आरूढ़ नहीं रहते। हम तो आपको भूल जाना चाहते हैं, ये बतलाएंगे। इसलिए इसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम ही विदग्ध, तुम चतुर हो, हम तुम्हें दोष कैसे दें? तुम्हारा हम दोष नहीं देते हैं। तुम कृपामय भी हो, ठीक है, आप कृपामय हैं, रसिक भी हैं, और हम लोग के हृदय को जानते भी हो। क्या हम लोग संसार को छोड़ दिया, पतियों को छोड़ दिया, लोक धर्म लज्जाशील जो कुछ था सब कुछ हमने छोड़ दिया आपके लिए, और आप हमें छोड़ करके उस प्रेम का बंधन काट करके चले गए मथुरा और फिर चले गए द्वारका। अब वहाँ जा करके आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए और वहाँ पर उन लोगों के साथ में मिलजुल करके रह रहे हैं, 40-50 वर्ष हो गया, एक बार भी इधर नहीं देखा। चित्तकारी तुमा होते विषय चाहिए लगाई थे, अब छोड़ करके चले गए। अब हमारे चित्त में क्या आता है, जब हम बैठते हैं तो क्या करती हैं, चुपचाप बैठती हैं आखिर, वही वृंदावन की बातें, उनसे मिलने की बातें, कुंज की बातें, पनघट की बातें, और जितनी बातें हैं रसमयी बातें याद आती है। अब उसको हम हटा करके हम सुखी होना चाहते हैं, किंतु हो नहीं सकता। एक साधारण बहुत प्रिय व्यक्ति है, उसके मर जाने पर उसके घर वाले, उसकी माँ बहन भाई स्त्री सब रोते हैं। किस लिए रोते हैं, भूलना चाहते हैं, भूल जाते हैं साजी, किंतु ये लोग तो भूल जाएंगे, ये कैसे भूलेंगे, इसलिए भूल नहीं पाती हैं कभी। जिसके प्रति जितनी आसक्ति होती है, ममता होती है, उतना ही उसके लिए क्लेश होता है विरह में। यह भी बात तो ठीक है, जो कृष्ण मथुरा वृंदावन से चले गए, अब कहते हैं चित्तकारी तुमा होते विषय चाहि लगाइते, विषयों में लगाना चाहती हैं लगा नहीं पाती, क्या होता है वही लीलाएं याद आती। किस प्रकार से हमसे संलाप करते थे, मथुराया गिरा बल गुबाक गया मनो गया पुष्कर एक क्षण विध करी इमांग वीर मोहियति अधर्षि धुना पास कलिलतांग मना कांत गच्छति। क्या याद आती है, वही सब बातें, रस भरी बातें, किस प्रकार से आप हमसे बातचीत करते थे, आप नहीं तुम करते थे, रस भरी बातें। ठिठोली, ठिठोली माने क्या, ठिठोली माने जानबूझ करके उनसे प्रेम भरी बातें करना, ये हम भूल नहीं सकती हैं। और आप कहते हैं ये चित्त हम में लगाओ, ये तो हंसी उड़ाना है, तारे ध्यान सीखा कराओ, लोक हंसाई हमारा स्थान स्थान ना करो विचार। जब तक ममता नहीं होगी अत्यंत अधिक, तब तक ये विरह नहीं होगा। सखाओं को विरह है कृष्ण के लिए, किंतु उतना नहीं है, परस्पर मिलजुल करके गैया भी चराते होंगे या बड़े दुखी होंगे, किंतु जसोदा मैया जैसा और गोपियों जैसा जसोदा मैया को विरह नहीं, और जैसे गोपियों का सबका विरह है, किंतु राधिका जी के गोपियां समझाती हैं राधिका जी को, सांत्वना देती हैं, सांत्वना कौन देगा, दुख है थोड़ा सा किंतु अधिक नहीं है। यदि ललिता विशाखा रहेंगी तो और सब उनको समझाएंगी, किंतु ललिता विशाखा जी का भी इतना गाढ़ ममता और इतना विरह नहीं है जितना राधा, इसलिए यही समझा। यही ममता पहले गुरु जी से करो, यदि गुरु जी शुद्ध हैं भजन परायण हैं तो ये ममता उनमें लाओ, या शिक्षा गुरु ऐसे हैं तो उनके शिक्षा गुरु के प्रति, सद वैष्णव के प्रति लाओ ममता, जो भजन की शिक्षा दे सकते हैं। यही ममता बढ़ने पर वो गुरु जी यदि ऐसे होंगे तो वो ममता क्या कर देंगे, उसको कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में ममता ला देंगे। भजन का नाम क्या है, साधन किसको कहते हैं, इसी ममता को ला करके कृष्ण के चरणों में अर्पित करने का नाम ये साधन है। पहले साधन, इसके बाद में भाव, इसके बाद में भक्ति। जब हृदय में आ जाता है कुछ प्रेम का आभास तो उसको भाव कहते हैं, इसके बिना इस चीज़ों को समझा नहीं जा सकता। और गुरु के ऋणी भी कोई नहीं हो सकता, गुरु का ऋणी कौन होगा, जो उनसे इन चीज़ों को पा करके समझ करके कृष्ण के प्रति कुछ ममता आई है वो समझ सकता है, जो गुरु जी ने क्या दिया। हमने अपने गुरु जी को देखा, अपने गुरु जी का नाम लेकर के वो नाम नहीं ले, प्रभुपाद नहीं कह सकते थे, क्यों? उनको यह अनुभूति थी जो क्या दिया। श्रील प्रभुपाद जी को अनुभूति है जो उनके गुरु जी ने उनको क्या दिया। हम लोगों में भी जिनको ये अनुभूति है कि हमारे महाराज जी ने, गुरु जी ने ये चीज़ हमको दी, तो उसके प्रति वो ऋणी हो जाएगा। और जिनको नहीं है उसके लिए कोई भी बात नहीं है, वो गुरु जी का संग भी नहीं चाहते, यहाँ पर भजन नहीं होगा गुरु जी के साथ, इसलिए उनका कोई भी ऋण नहीं है, गुरु जी के प्रति ऋणी नहीं हो सकते। और जो समझते हैं ये क्या दे रहे हैं, भजन पारायण है, भजन की निष्ठा दे रहे हैं, वो तो उनके ऋणी होते चले चले जाएंगे। हम लोग अब समझते हैं कि हम गुरु के क्या ऋणी हैं। आज गुरु जी नहीं होते, हमको पकड़ करके नहीं रखते अपने पास में। रूप गोस्वामी की महिमा में जानता, ललिता विशाखा की महिमा को जानता, स्वरूप दामोदर की दया को, रूप गोस्वामी को दया को समझता। आज ही गुरु जी की दया है, और कर्मशः ऐसा बीज बोया है कि वह बीज कुछ पनप रहा है, और उसके दार में हम लोग और समझते जाते हैं कि हम कितने ऋणी हो रहे हैं। अभी भी नहीं समझते पूरा, जब हम लोग सिद्धि प्राप्त करेंगे उस समय समझेंगे जी हम गुरु जी के क्या ऋणी हैं। हाउ वी आर डेटेड टू गुरुदेव आर एनी वैष्णव, नाउ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज भक्ति, बट बाय द मर्सी If you will understand something a little bit, what is bhakti? Why you are indebted to Swarup Damodar, Rupa Goswami, Raya Ramananda, why to Chaitanya Mahaprabhu? If you are not realizing, oh, nothing is there. But when you will realize this fact, then you will be totally indebted to your Guru. इसलिए इसको समझना चाहिए गुरु जी क्या दे रहे हैं, इस चीज को समझो, और जब समझेगा तो उनका पूर्ण रूप से ऋणी हो जाएगा। इसलिए कहती हैं नहे गोपी जोगेश्वर, गोपियां क्या हैं, जोगेश्वर की बाप हैं, परदादा हैं, है ना, जोगली जी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मा शंकर, सनत सनंदन, सनत कुमार ये चिंता नहीं कर सकते जो गोपियों का हृदय कहाँ है, कैसे उन्नत हैं, कृष्ण जिनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, नहीं समझते लोग। तो हम लोग जोगेश्वर नहीं हैं जो उनके चरण कमलों का ध्यान करेंगे, हम तो चाहते हैं क्या इन चरण कमलों को भूल जाएं सदा के लिए, भूल नहीं पाती। इनके चरण कमल जहाँ पड़े, जमुना के पनघट पर पड़े, राधा कुंड के तट पर पड़े, जहाँ उनका मिलन होता था, स्मरण कराता है, उनके लीलाओं का स्मरण कराता है, इसलिए हम लोग जोगेश्वर नहीं जो उनका ध्यान करके पाएंगे। हम तो उनको भूल जाना चाहते हैं संपूर्ण रूप से। तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुठी नाटी, और विशेष करके तुम ऐसी शिक्षाओं हम लोगों को देते हो, कुटी नाटी और परिपाटी। परिपाटी माने क्या, परोक्षवाद। ये कृष्ण जो कुछ कर रहे हैं उनको उद्धव के द्वारा या स्वयं कर रहे हैं, क्या चीज़ है ये परोक्षवाद। कह रहे हैं कृष्ण हमसे तुम्हारा संपूर्ण ये वियोग नहीं, इसका मतलब क्या है, सचमुच में तुम वियोग में जब तड़कती हो तो मैं रहा नहीं जाता, तो मैं तुम्हारे आकर के साथ साथ में क्रीड़ा विलास करता हूँ, तो ताप से मिले नहीं है, किंतु तुम उसको क्या मानती हो, स्फूर्ति मानती हो, मैं तो जाता हूँ। इसलिए इस और कुटी नाटी जो नहीं करना चाहिए ऐसे उपदेश देते हो, ध्यान करो। अरे भाई बात यह है कि हम कुप संसार और लोगों की तरह संसार कुप में नहीं पड़ी हैं, हम कहाँ पड़ी हैं, अगाध समुद्र के जल में, विरह का समुद्र में, कुआं तो थोड़ा और ये क्या है, पारावार शून्य, अगाध विरह का समुद्र, और उसमें क्या है, काम तिमिंगिल गिले। तिमिंगिल किसको कहते हैं, बड़े बड़े मच्छों को कहते हैं जो हवाई में होती है, वो क्या वेल मछली, वो कम से कम तो 80-90 फुट 100 फुट लंबी चौड़ी होती है। उन मछलियों को भी जो निगल जाए वो है तिमिंगिल। वो क्या चीज है, वो है क्या काम, काम माने कृष्ण के विरह मिलने की तीव्र लालसा, वो उनको निगल रही है इस समुद्र में, उसे हम कैसे पार जाएं। उस समय में आपके साक्षात मिलन के द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा हमारे प्राणों की रक्षा हो सके। देह स्मृति नहीं जा, गोपियों को देह की स्मृति नहीं, संसार को कहां था उनको, संसार का कुआं कहां है, संसार में कुएं में कितना पानी, थोड़ा सा पंप लगा दो पानी खींच जाएगा, सब समुद्र का पानी खींचेगा। तो संसार को उनका कहां है जबकि कृष्ण की विस्मृति ही नहीं है, अपने शरीर की स्मृति नहीं है, कहां होते ना चाहे उद्धार, वो कुप संसार कुप से अपना उद्धार नहीं चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, चाहते हैं बिरह समुद्र जले कामते मिंगिल गले गोपी गन्नी हतार पार, गोपियां इस बिरह समुद्र में आर पार शून्य, चौड़ाई गहराई शून्य, और उसमें काम रूपी, काम मन कृष्ण से मिलन की तीव्र ये बिरह उसे निगल रही है, गोपियों को उसे पार। ये कैसे हो सकता है, वृंदावन में यदि स्वयं चले वो चरण, हमारा हृदय और वो वृंदावन एक है, उसके मिलन में ही ये सब हो सकता है, अन्यथा नहीं। हम लोगों को तो ये तो बात बहुत दूर की, बहुत दूर की, अभी पढ़ने से लोग कहेंगे ये सहजिया है, फिर भी ये सबका अनुशीलन होना चाहिए, विशेष करके भक्ति के जो अंग हैं उसको पालन करना चाहिए। केवल सुनने से नहीं होगा, कुछ पालन करने से होगा। तो आप लोग पालन के लिए वैसे नाम कीजिए, हरि कथा सुनिए, उसको अमल में लाइए, आप सबका कल्याण। आगे कल हम गौर प्रेमानंदे।